जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आवाज क्यों नहीं आ रही? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। पुकारो पुकारो, उदय से पुकारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंधे पे रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। सब लोग पुकारो, एक मन से पुकारो। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। श्री श्री इमली तला धाम की सभी महानुभावों से विनती है और सूचना है, कृष्ण शक्ति माता जी कथा जब सुनते हैं तो कथाकार की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, पीठ करके बैठना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे नियम बताऊं क्या? आइडियल बोल रहा हूं, आइडियल। अभी कभी कभी ऐसे स्थिति में बैठेंगे तो आइडियल मोस्ट नहीं हो सकता है। एकदम आइडियल अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए। कथाकार जहाँ बैठे हुए हैं उसके ऊपर के लेवल पर नहीं बैठना चाहिए, एक नियम है। कथाकार के पीछे नहीं बैठना चाहिए, आगे बैठना चाहिए। और कथा को पीठ दिखा के बैठना नहीं चाहिए, कथा के सामने बैठना चाहिए। कितनी भी असुविधा हो लेकिन कथा के सामने बैठना चाहिए। और कथा में बैठकर सोना भी अपराध है, तो इसलिए भोजन कर दिया आपने अच्छा बढ़िया तो ज़्यादा अपराध होने के चांसेस हैं। तो उस अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। सबको पता है, सबको पता है क्या करना चाहिए, सब मालूम है सबको। प्रश्न केवल अमल में लाने का है बस, हाउ टू एग्जीक्यूट व्हाट वी नो। एनीवेज गुरु महाराज और परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और हमारे परंपरा के आचार्य, इनके सबके असीम कृपा से अभी हम लोग 20 तारीख के जनवरी के इस दिन शनिवार के दिन इमली तला धाम में आए हैं। इमली तला धाम की और केवल इमलीतला धाम ही नहीं, आपके सामने से जमुना देवी भी है। ऐसा ये बहुत पवित्र धाम है। बीच में परिक्रमा मार्ग है, सामने यमुना देवी है, पीछे इमलीतला है। तो एक इमलीतला जो है ना, वो कई कई लीलाओं का एक संगम है यहाँ पर। तो अभी आपके पलकों की लेवल को देखते हुए हम तय करेंगे कि कितना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। केवल हम बताए गए सूचनाओं का पालन करेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन बताने के बाद भी आप चश्मा पहन के रखते हो तो उसका फल तो आपको मिलना ही है। एक चश्मा गया तो अटेंशन गया ना पूरा, गया कि नहीं? और किसी का मोबाइल की घंटी बजेगी तो मोबाइल वो लेके जाएगा, ध्यान रखना। अपने अपने बैग को अपने गले में लटका के रखना। कुछ बोलूं क्या? वृंदावन धाम के जितने वृक्ष हैं वो सब वृक्ष जो हैं वो जितने भी वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष यानी जो दिव्य धाम से हैं और भगवान के भक्त संत हैं और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, जैसे हम बोलते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश्च। तो वैष्णव भी कल्प वृक्ष की तरह होते हैं और कल्प वृक्ष भी वैष्णव की तरह होते हैं। ब्रज में पेड़ के भाव तीन प्रकार के हैं, या तो पेड़ स्वयं राधा रानी हैं, या तो पेड़ स्वयं संत हैं, ऋषिगण हैं, जो ये प्रार्थना करते हैं कि ब्रज में कोई पेड़ पौधा बन जाए, तो उनकी इच्छा के अनुसार भगवान उनको ब्रज में पेड़ या पौधा बना देते हैं। तो या तो राधा रानी स्वयं हैं, या तो संत लोग वहाँ पर पेड़ के रूप में भजन कर रहे हैं। जैसे पांडव, पाँच पांडव जो हैं वो आज भी राधा कुंड के किनारे, श्याम कुंड के किनारे भजन कर रहे हैं। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वप्न में आकर बताया था कि हम यहाँ पर पेड़ के रूप में भजन कर रहे हैं। तो जो भी हम बता रहे हैं उसको शास्त्र का प्रमाण है। और तीसरा जो है वो हमारे जितने भी पेड़ हैं यहाँ के वो कल्प वृक्ष हैं। तो इसलिए किसी भी तरह से देखा जाए तो भी ब्रज के पेड़ पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। लेकिन कुछ पेड़ जो है वो बड़े विशेष पेड़ होते हैं, उनमें से भी विशेष देवता सब लोग पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही हैं और इंद्र सरस्वती पार्वती ये सब अपनी जगह पर बहुत श्रेष्ठ हैं। वैसे कुछ पेड़ जो है वहाँ पर विशेष भगवान ने लीला किया है, जैसे बंसीवट बरगद का पेड़, जहाँ पर बैठ कर भगवान ने बीच रात में बंसी बजाई थी, विशेष बंसीवट। अक्षयवट जहाँ पर भगवान ने दोपहर का भोजन किया था और भोजन करने के पहले अपने टिफिन डब्बा जितने थे वो उस पेड़ के शाखाओं पर लटकाए थे, फिर दोपहर को भोजन किया था, उसका नाम अक्षयवट है, कि दूर वन में है। फिर टेर कदम्ब, जिसमें भगवान ने ऊपर सबसे चोटी पर चढ़कर छठवीं नोट बजाई थी, छठवां स्वर जो गायों को बुलाने के लिए बजाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर है इमली तला। इस बंद दरवाजे के अंदर इमली का पेड़ है जो उसके बाद में आप झांक के देख सकते हैं। तो वो इमली का पेड़ है। और एक बार राधा रानी जब भाग भाग के यहाँ पर चल रही थी तो उनको पैर को ठेस लगती है और उसमें खून बहने लगता है। ध्यान कथा पे रखना, बंदर को देखने के लिए हम वृंदावन में नहीं आए हैं, श्री कृष्ण को देखने के लिए आए हैं। और अनेक प्रकार की माया ब्रज में चलती रहती है आपका ध्यान भगवान से हटाने के लिए। हमको प्रयास पूर्वक कुछ भी हो जाए फिर भगवान पर अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। दैट इज अ टेस्ट, दैट इज कसौटी, ठीक है। और अलग समय निकाल के आना एक दिन बंदरों को देखने के लिए। लेकिन जब भगवान की कथा हो रही है तभी आप केवल भगवान की कथा पर ही अपना ध्यान रखना। तो एक बार राजा रानी भाग भाग के चल रही थी तो पैर को ठेस लगती है और खून निकलता है, तो वो उससे क्या है, तो सखियां कहते हैं कि ये वृक्ष है, इसकी जड़ जो है ना कुछ जगह पर जमीन से ऊपर आई हुई है। तो राजा रानी उस पेड़ को शाप दे देती है कि इमली के वृक्ष को ब्रज में कहीं भी फल नहीं लगेगा। आज भी आश्चर्यकारक रीति से कोई बॉटनिकल वनस्पति शास्त्र के तरफ से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ब्रज में इमली के पेड़ को इमली क्यों लगती नहीं है। तो इस तरह से इमली का पेड़ यहाँ पर खड़ा है। लेकिन इस इमली के पेड़ को राधा रानी ने बहुत लीलाओं में स्नान दिया है विशिष्ट। पहली लीला ये है कि जैसे मैंने कहा कि यमुना किनारा जहाँ भी है वो सब रास मंडल क्षेत्र है, रास का क्षेत्र है ना, तो ये भी रास का ही क्षेत्र है। बंसी भट यहाँ से भी दूर है और दूर है। आप आगे 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 चल के जाएंगे तो जब ब्रज जो परिक्रमा राइट टर्न लेती है ना वहाँ पर कहीं बंसीवट है, बहुत दूर है, लेकिन ये भी राष्ट्र मंडल का क्षेत्र है क्योंकि करोड़ों गोपियाँ जब नृत्य करती हैं तो बंसीवट सेंटर में है लेकिन दूर दूर तक नृत्य फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो ये भी राष्ट्र मंडल का ही क्षेत्र है, ये भी जमुना किनारा है, ये भी परिक्रमा रास्ते का एक क्षेत्र है। तो जब भगवान रास में जब गोपियों को थोड़ा अहंकार हो गया कि सबको छोड़कर वो केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, सबको ये लगा, सब लोग मग्न थी, आजू बाजू में देखने के भाव में नहीं थी लेकिन उनको लग रहा था कि सबको छोड़ के श्री कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान अचानक अंतर्धान हो गए, राधा रानी से भी अंतर्धान हो गए। पहले कुछ समय राधा रानी को लेके अंतर्धान हो गए, फिर राधा रानी को भी थोड़ा सा दया आई गोपियों के ऊपर कि सबको छोड़कर भगवान मेरे साथ रह रहे हैं, तो रूठ कर बहाना बनाकर वो भी चली गई गोपियों को सांत्वना देने के लिए। बड़ी लंबी लीला है। एनीवेज, तो भगवान जब रास छोड़कर निकले तो वो यहां आकर इस पेड़ के नीचे बैठ गए। और राधा रस सुधा निधि में इसका एक श्लोक आता है, इसमें वर्णन दिया है कि कालिंदी तटक कुंज मंदिरे, वहां पर श्री कृष्ण भगवान कालिंदी यानी जमुना के तट पर सुंदर वन में बैठकर कुंज में बैठकर राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान करके मुख से राधा राधा नाम उच्चारण कर रहे हैं। और वर्णन उसका आता है कि वो अपनी साधना करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी साधना करते हैं और उस साधना में चिंतन राधा रानी के दो चरणों का करते हैं और मुख से प्रेम से राधा राधा उच्चारण करते हैं और आंखों से आंसू बहते मग्न होकर उच्चारण करते रहते हैं। यहाँ बैठे पेड़ के नीचे और ये साधना करने लगे। वहाँ से राधा रानी गोपियों को लेकर ढूंढते ढूंढते आ रही थी, गोपी गीत गाया, वेणु गीत गाया। जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मोर पंख पहना हुआ है, पीताम्बर भी पहना हुआ है, लगता भी कृष्ण जैसा है लेकिन उसका रंग जो है वो स्वर्ण रंग है, सांवला रंग नहीं है। तो ये व्यक्ति को कभी उन्होंने देखा नहीं था। वैसे भेष वाले सांवले रंग के कृष्ण को उन्होंने कई बार देखा था तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसको आश्चर्य करने लगी, कौन है, ये तो कभी देखा नहीं ऐसे। तो जब चर्चा करने के पश्चात राधा रानी फिर सामने आई, उन्होंने कृष्ण भगवान को स्पर्श किया, उनको पता नहीं था कृष्ण है करके, लेकिन स्पर्श किया तो जो स्वर्ण रंग था वो सांवले रंग में परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे सांवला हो गया वो रंग, तो गौर वर्ण था स्वर्ण वर्ण था वो सांवला हो गया। तो फिर उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा कि ये क्या रहस्य है, आप तो सांवले रंग के थे गौर वर्ण के कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपको छोड़कर मुझे भी आपका विरह सहन नहीं हो रहा था, तब मैं आपका ही ध्यान करते आपका ही नाम का उच्चारण करते बैठा था तो मैं आपमय हो गया, यानी राधामय हो गया। तो राधामय हो गया तो आपमय हो गया, तो आपका रंग जो कांति जो है वो मुझ पर चढ़ गई और मैं गौर वर्ण का हो गया। और जब मैं इस गौर वर्ण का बाहर से था तब अंदर से आपके प्रेम का जो अद्भुत अनुभव मुझे हुआ वो बड़ा अतुलनीय था, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसकी एक झलक मैंने उसका अनुभव लिया। रवि, मैंने निर्णय ले लिया है कि आपके भाव में, आपके भाव को अनुभव करते हुए जो दिव्य अनुभूति मैंने प्राप्त की, इसके पहले कभी भी प्राप्त नहीं की थी। इसलिए मैं अभी एक पूरा अवतार लूंगा अगले युग में, और आपका भाव ग्रहण करके आपके भाव का जो अनुभव है उसमें डूब जाऊंगा। तो राधा रानी बोलती है कि अगर आप मेरा भाव लेकर मेरे जैसे अवतरित होंगे तो आप पत्थर पे गिरोगे, कांटों पे गिरोगे, पेड़ से गिरोगे, नदी में गिरोगे, अपने आप को जख्मी करोगे, तो मुझे ये सहन नहीं होता विचार भी। इसलिए अगले अवतार में जब आप आएंगे इस प्रकार से, तो मेरी कांति से मैं आपको ढक दूंगी ताकि आपको वेदना, जख्म, कष्ट नहीं होगा। जब आप भाव विभोर होकर मेरे जैसे भाव में आओगे तो भाव विभोर होकर गिरते रहोगे आप, हर जगह पर बेहोश होते रहोगे। तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो हृदय में राधा रानी का भाव है, और राधा रानी ने उनको अपनी कांति को, कांति से आवृत किया है। तो ये हुई द्वापर की लीला। फिर उसी द्वापर में भगवान का इंद्र ने अभिषेक किया, है ना। इंद्र ने बड़ा अपराध किया, फिर अपराध से माफी क्षमा मांगने के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए, फिर उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। और भगवान का जब अभिषेक किया तो गोविंद नाम से उनको पुकारा गया। उनका अभिषेक करके उनको गोविंद नाम की उपाधि इंद्र ने जाहिर कर दिया कि अभी भगवान श्री गोविंद के नाम से जाने जाएंगे। तो ये खबर गोपियों तक पहुंची कि हमारे लाला, हमारे कन्हैया जी का अभिषेक हो रहा है वृंदावन के राजा के रूप में, तो हम भी आपका अभिषेक करना चाहते हैं राजा रानी, वृंदावन की रानी के रूप में, वृंदावनेश्वरी के रूप में। तो सब सखियां राधा रानी को लेकर इस पेड़ के नीचे आई है। यहाँ पर सिंहासन सजाया है, यहाँ पर उनका श्रृंगार किया है, अभिषेक की सामग्री लाकर राधा रानी का सागर संगीत उन्होंने अभिषेक किया है, और उनको यहीं बैठाकर श्री वृंदावनेश्वरी के नाम की घोषणा कर दी है। श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी महारानी की। तो इस पेड़ के नीचे राधा रानी का महाअभिषेक भी हुआ है। फिर जब कलयुग आया और चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, निमाई पंडित 24 साल नवद्वीप में रहे, फिर संन्यास लिया, जगन्नाथपुरी गए, वहाँ दक्षिण भारत की यात्रा में गए, फिर पुरी गए, लेकिन हर समय उनको वृंदावन में आने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। और जगन्नाथपुरी के भक्त इतने होशियार थे कि वो भगवान को जाने देते नहीं थे। वो कहते अच्छा अच्छा अभी जाना है, ठीक है अभी होली करके जाना, होली क्या बोलते थे, रथ यात्रा करके जाना, ये बोलते ढोल यात्रा करके जाना, फिर ये करके जाना, फिर वो ओढ़न षष्ठी करके जाना। इस तरह साल बीतता था, फिर वापस होली आती थी, फिर कहते थे वापस रथ यात्रा करके जाना। इस तरह से कई साल तक उन्होंने उनको वहाँ पर ऐसा ही भेजा ही नहीं। फिर भगवान का जो आतुरता थी भगवान की वृंदावन जाने की, वो एकदम बढ़ती 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 गई। एक दिन चरम सीमा में पहुंच गई तो भगवान बोले मैं जा रहा हूँ अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर जब वो निकले तो वो जनता उनके साथ निकली, हजारों लोग। तो सनातन जी महाराज ने उनको बताया कि भगवान ऐसे जनता को लेकर वृंदावन नहीं जाना चाहिए, बहुत नम्रता से जाना चाहिए, इतना जन समुदाय लेकर जाना नहीं चाहिए। दोबारा लौट के आते हैं, एक दिन रात को अकेले निकल जाते हैं। कुछ कुछ भक्तों को बताते हैं मैं जा रहा हूँ, तो दो भक्त उनको दे जाते हैं, बलभद्र भट्टाचार्य और एक भक्त, और उनको लेकर वो चल पड़ते हैं और फिर वृंदावन में आते हैं। बहुत सुंदर लीला है, आप लोग जरूर चैतन्य चरितामृत पढ़ना कि भगवान ने कैसे प्रवेश किया वृंदावन में। भक्ति रत्नाकर पढ़ना, उसके अंदर यहाँ पर क्या क्या किया उसका सुंदर वर्णन दिया है। संक्षेप में भगवान यहाँ पर इमली तला, तो इमली का पेड़ जमुना के किनारे हैं, वहाँ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। कैसे करते थे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको वास्तव में ऐसा विश्वास है कि वो ऐसे जप करते थे? हाँ या ना? वैसे जप नहीं करते थे वो, जब जप करते थे तो वो गौर वर्ण के, स्वर्ण वर्ण के भगवान सांवले रंग के हो जाते थे। हम में से ना मैं ना आप कोई सांवला रंग का तो हो नहीं गया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जप करते थे। इस पेड़ के नीचे बैठकर जमुना जी को सामने निहारते हुए ऐसा नाम लेते थे कृष्ण का कि कृष्णमय हो जाते थे, उनकी कांति सांवले रंग की हो जाती थी। जब जब रोकते थे तो दोबारा गौरव वर्ण के हो जाते थे। मतलब इसी जगह पर कृष्ण भगवान सांवले रंग के गौरव वर्ण हो गए थे और चैतन्य महाप्रभु गौरव वर्ण के सांवले रंग के हुए थे। तो मैसेज क्या हमारे लिए इसमें? मैसेज यही है कि सोते सोते जप नहीं करना है, मग्न होकर करना है, नाम से एक रूप होकर भगवान से प्रेम से एक रूप होकर हमको जप करना है। और मैं हमेशा एक विनती करते रहता हूँ कि जप नहीं करना है, पुकारना है हमको, ऑलवेज कीप कॉलिंग, केवल उच्चारण नहीं करना है, पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे वो मधु पंडित महाशय जब पुकारते थे ना, कोथा है कृष्णा, कहाँ हो, तो ऐसे ही नदी में गिर गए जमुना जी में। सोचो आप कितनी मग्नता है, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, पुकारते पुकारते जा रहे हैं तो नदी में गिर जाते हैं, डूब रहे हैं, तो भगवान उनको बचाने के लिए गोपीनाथ के रूप में नदी से प्रकट हो जाते हैं और उनको गोद में लेकर नदी के बाहर आते हैं। फिर वो होश में आते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं और पूछते हैं भगवान आपकी क्या सेवा करूं, तो भगवान कहते हैं मैं अभी मूर्ति रूप बन जाता हूं फिर मेरी सेवा करना। तो वो साक्षात गोपीनाथ जी डीटी विग्रह बन जाते हैं और फिर बंसीवट के तले ये प्रकट हुए थे, वहीं पर उनकी सेवा होती है, वहीं पर उनका मंदिर है। तो बात निकली थी पुकारने की, तो कैसे पुकारना चाहिए? पुकारने से कृष्ण को आने को मजबूर करना चाहिए। श्यामानंद जी भी ऐसे ही पुकारते थे तो राधा रानी प्रकट हो गई थी उनके लिए। ऐसे सब संत लोग पुकारते हैं, शुद्ध हृदय से निरपेक्ष भाव से पुकारते हैं। तो महाप्रभु जी स्वयं आकर यहाँ पर अपना उदाहरण दे रहे हैं। भगवान के अलावा और श्रेष्ठ उदाहरण कौन दे सकता है? तो भगवान जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है उसका उदाहरण देने के लिए स्वयं आते हैं, बाकी लोगों को भेजे, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण कार्य है कलयुग में भगवान के नाम को पुकारने का, उसका डेमो देने के लिए खुद आते हैं और खुद दिखाते हैं कि कैसे नाम को पुकारा जाता है। तो ये आदर्श भगवान ने दिया। ऊपर से जैसे हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर है ना, उधर एक संस्था है BACE, क्या उसका फुल फॉर्म है? भक्ति वेदांता एकेडमी ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन बेस, है ना। उनका काम ही है कि अलग अलग कोर्स करना, लोगों को ज्ञान देना, एग्जाम लेना, उनको प्रवचन देना, उनके लिए लेक्चर देना, पुस्तक छाप के देना, उसका करिकुलम वगैरह वगैरह। तो भगवान ने भी यहाँ पर भगवान नाम के जप के ऊपर सेमिनार लिए हुए हैं। 2 महीने भगवान यहाँ रहे, हर रोज शाम को भगवान यहाँ पर ब्रजवासी और गौड़िया भक्तों के लिए भगवान नाम के जप के विषय में सेमिनार लिया करते थे। ये बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर केवल जप नहीं किया है, डेमो भी दिया और खुद सिखाया भी है भगवान ने एक अध्यापक बनकर। उस अध्यापक बनकर जब पढ़ा रहे थे भगवान, तो उस समय अक्रूर घाट में भोजन करते थे, मध्यान्ह अक्रूरे भोजन, इमली तला पे जप करते थे और मध्यान्ह में अक्रूर घाट पे भोजन करते थे, वही निवास करते थे। तो एक दिन जब वो कथा कर रहे थे, मतलब सिखा रहे थे लोगों को, तो ऐसे ब्रज में हल्ला मच गया, कृष्ण आ गए, कृष्ण का अवतार हो गया। मतलब क्या हो गया? तो लोग ऐसे बता रहे थे कि रात को जमुना जी में वो कालिया कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, वो कालिया के सर पे एक मणि भी है चमकदार और उसके ऊपर कृष्ण नृत्य भी करते हैं। तो सब लोग कथा छोड़ के भाग रहे हैं जमुना जी की ओर, अरे भगवान अवतार ले रहे हैं। तो महाप्रभु चैतन्य को थोड़ा सा क्रोध आया, सबको डांटा उन्होंने, बोला जैसे ब्रज में ऐसे बवाल उठते रहता है हमेशा कुछ ना कुछ, उसमें शास्त्र के चक्षु के आधार पर आपको समझना चाहिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे कोई बोल रहा है इसलिए शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र ये बोलता है कि अभी कोई भगवान का अवतार का शेड्यूल नहीं है, तो ये सब सही नहीं है। यथावकाश सबको पता चलता है कि एक मछली मार व्यक्ति रात को एक लालटेन लेकर अंधेरे में मछली मार रहा है, फिशिंग कर रहा है, फिशिंग, तो जो मछली वाला है मारने वाला, उसको लगता है लोग लग रहा है कि कृष्ण है, और जो लालटेन रखी है वो लगता है कालिया है, उसके सर का मणि है, उसका प्रकाश शब्द दिखाई पड़ रहा है। बाद में पता चलता है सत्य है कि रात में एक सामान्य मछली मार जो है मछली पकड़ रहा है, और कुछ कृष्ण विष्णु नहीं है उसके अंदर। तो भगवान ने स्वयं दिखाया कि किसी भी अगर चमत्कार का वर्णन होता है, चमत्कार हो रहा है, तो शास्त्र के आधार पर ही उसको परखना चाहिए। किसी की बातों में आकर किसी को सत्य नहीं मानना चाहिए। वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, हल्ला मच रहा है, हजारों लोग वही बोल रहे हैं। हजारों लोग अगर बोलते हैं कि 2 और 2 5 तो क्या वो सत्य हो सकता है? लाख लोग बोलेंगे 2 और 2 5 तो क्या लाख लोग बोल रहे हैं सत्य हो जाएगा? वो नहीं। लाख लोगों के सामने बच्चा भी बोलेगा 2 और 2 4 तो वही सत्य है जो बच्चा बोल रहा है, और लाख लोग बोलने पर भी वो असत्य है। तो सत्य असत्य की परीक्षा जो है वो शास्त्र से होती है। तो फिर यहां से भगवान 2 महीने के बाद चले गए, मथुरा से होते हुए फिर वापस जगन्नाथपुरी चले गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का 2 महीने का जो निवास है उसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में बड़े विस्तार रूप में दिया गया है, बहुत सुंदर। तो ये जगह बड़ी अद्भुत जगह है। इस जगह का साक्षात्कार लुप्त होने के बाद साक्षात्कार जो है वो प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने किया था, उसको दोबारा प्रकट किया उन्होंने और इस स्थान को एस्टैब्लिश किया। और इसी स्थान में स्वयं भक्ति सिद्धांत जी महाराज ने श्री श्री गौरनिताई और श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का विग्रह भी स्थापन किया, जो पहले ऐसा था। आप जहाँ बैठे ना, इसके तुरंत बाद इधर गौरनिताई थे, इधर राधा गोपीनाथ थे। आज उसका जीर्णोद्धार हुआ है तो बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है, उसके अंदर गौरनिताई जी और राधा गोपीनाथ जी का विग्रह स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने हाथों से स्थापन किया है। तो ये बहुत पावरफुल जगह है, ये जप की स्थली है, ये भजन करने की स्थली है। यहाँ पर एकांत में आकर शांति से भजन करना चाहिए। और इस पेड़ को मैंने कहा था ना, जो पेड़ जो होता ना, पेड़ जो होते हैं उनके लिए एक शक्ति होती है कि उस पेड़ के होने की जगह पर जो लीला चल रही है उसका सार वो ग्रहण करते हैं। तो ये पेड़ इमली तला जो है वो कल्प वृक्ष है, बड़ा पावरफुल वृक्ष है। वो चैतन्य महाप्रभु का संग उसको मिला है, राधा रानी का अभिषेक उसके तले हुआ है, कृष्ण भगवान आकर यहाँ पर राधा रानी का ध्यान किया है। कितना वरदान है इस जगह को, इतनी पावरफुल जगह है। तो इस के विषय में ज्ञान रखते हुए भक्तों को यहाँ पर बड़े प्रेम से भगवान के नाम को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पेड़ ऐसा जा रहा है, तो जो पेड़ था पुराना वो अभी शरीर छोड़ चुका है, उसकी जगह पर नया पेड़ है, लेकिन पुराना पेड़ जो है उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। तो जब वो पेड़ जीवित था तब इस पेड़ के बाजू वाला प्लॉट किसी ने ले लिया और घर बनाना आरंभ किया। अभी वो घर भी टूट गया शायद, लेकिन जब वो घर बन रहा था तो इस पेड़ की एक शाखा जो है ना वो उस घर की ओर जा रही थी, है इधर ले पेड़ लेकिन शाखा उधर जा रही है। तो वो अभी पता है ना आपके आर्किटेक्ट कैसे होते हैं, उनको कोई भाव तो कोई होता नहीं है। उन्होंने उस शाखा को काट दिया, जैसे ही शाखा को काटा उसके अंदर धो धो खून बहने लगा, सब डर गए। तो भक्ति सुधा जी ने कहा कि साधारण वृक्ष नहीं है, ये कल्पित वृक्ष है, इसकी शाखा को काटना नहीं चाहिए। तो फिर वो शाखा को इस तरह से किया कि शाखा को रखते हुए घर बनाया गया, घर में शाखा स्वच्छंद विहार कर रही है। आज भी ब्रज में भी जब भी कोई घर बनाते हैं और पेड़ कोई होता है तो पेड़ को कोई काटता नहीं है, पेड़ को वैसे ही रखते हुए आपके बेडरूम से आपके पहले मंजिल से पूरा पेड़ वैसे रहता है और घर उसके आजबाजू इर्द गिर्द बन जाता है। ये भाव है ब्रज का। जब हमने हॉस्पिस की जगह ली थी ना तो मैंने कहा ना करीब करीब 28 वृक्ष थे वहां पर। तो पहले वाले आर्किटेक्ट ने क्या किया था, पूरा बढ़िया डिजाइन बना दिया उसका, उसमें 4-5 ट्रीज को नॉक डाउन करने का प्लानिंग किया था कि वो तोड़ के ही उधर बिल्डिंग बनेगी। लेकिन जब फाइनल प्लान हमारे पास में आया, गुरुजी के पास में आया, सब चर्चा के लिए बैठे, सबका ये स्ट्रांग मत पड़ा कि एक भी पेड़ को बिल्डिंग बनाने के लिए काटना नहीं चाहिए। तो दोबारा उतना ही दाम देकर दूसरा डिजाइन बनाया गया, पेड़ को पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हुए बिल्डिंग बनी हमारी। आज भी देखेंगे ना कोई बंबई से आर्किटेक्ट आया तो आपकी बिल्डिंग का जो कि हंसेगा, बोले क्या बिल्डिंग बनाई है ऐसे गोल घूमते हुए बनी, लेकिन उसका भाव यह है कि वो पेड़ के आसपास घूमकर बनाई गई है। वो बड़ा पेड़ जो है ना, जो आप चढ़ते हो उधर, उस पेड़ को बचाने के लिए ऐसे बिल्डिंग बनाई, क्योंकि जैसे आप जानते हो वो पेड़ के अंदर ऋषि मुनि तप करते हैं, कल्प वृक्ष हैं, राजा रानी स्वयं हैं, तो उनको हम हमारे स्वार्थ के लिए काट नहीं सकते। अगर वो अपनी प्राकृतिक मौत होती है उनकी तो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से उसका अपराध नहीं होना चाहिए। ब्रज के पेड़ काटने का बहुत बड़ा भयंकर अपराध है। तो ऐसे ही दिव्य धाम है, आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। सामने जमुना जी है, अभी जमुना जी के विषय में क्या बताएं आप? श्री जमुना जी कैसे प्रकट हुई? श्री जमुना जी गौलोक धाम में राधा रानी को भगवान ने निर्माण किया, किसी समय, बहुत पुराने समय, राधा रानी के बाएं अंग से सब गोपियों का, देवियों का निर्माण हुआ, भगवान के बाएं दाएं अंग से गोपों का निर्माण हुआ, गोपालों का। इस तरह से भगवान ने गौलोक धाम का निर्माण किया, और गौलोक धाम में जब भगवान ने सोचा कि रास रचाया जाए, जय जय श्री राधे श्याम, तो जब भगवान ने रास रचाया तो सभी गोपियों के और भगवान के शरीर से दिव्य स्वेद जल निर्माण हुआ। बहुत हैवी लैंग्वेज है क्या, समझ में आया ना? जिसको हम पसीना कहते हैं हमारी भाषा में, लेकिन उसको पसीना नहीं बोल सकते, वो दिव्य स्वेद बिंदु कहते हैं उसको, सुगंधित होते हैं, जिसके प्रसारण होने से, निर्माण होने से सुगंध आती है और चैतन्य उत्पन्न होता है। ऐसा दिव्य जल उनके शरीर से प्रकट हुआ और वो एक जगह इकट्ठा हो गया। तो वो जब इकट्ठा हुआ जल, तो राधा रानी जब दर्शन करने गई तो इतनी प्रसन्न हो गई उस जल को देखकर, इतना दिव्य अनुभव हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस जल को अभी एक नदी का प्रवाहित रूप दिया जाए। तो वो जो प्रवाहित रूप है वो यमुना जी, उस तरह से यमुना जी का निर्माण हुआ। और फिर यथावकाश जब भगवान का नीचे आने का, अवतार लेने का समय हुआ, तो भगवान ने यमुना जी को आदेश दिया कि आप अभी पृथ्वी पर जाओ। तो फिर वो कहते हैं कि 1,00,000 पहियों का रथ में बैठकर श्री यमुना जी अपने सैकड़ों साथियों को, सहेलियों को लेकर, जिसमें अनंत करोड़ों घंटियां लगी हुई थी सोने की और मखमल इसमें रत्नों से जड़ी हुई, ऐसे दिव्य रथ में बैठकर श्री यमुना जी गोलोक वृंदावन छोड़कर सारे धामों को पार करते हुए विरजा में आती है, विरजा को क्रॉस करते ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है, और ब्रह्मलोक से फिर करते 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 पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर अपने दिव्य जल से उसको पुनीत कर देती है। इसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है कि कैसे यमुना देवी पृथ्वी पर आती हैं ऊपर से। तो पृथ्वी पर जब वो आती है, जल रूप में तो आ ही रही है, लेकिन देवी रूप में भी आती है। कैसे आती है कि सूर्यदेव जो है वो उषा देवी से विवाह करते हैं, और सूर्यदेव इतने तेज वाले हैं, है ना, उधर मत देखना आप, इधर ही देखना, जो इतने तेज वाले हैं कि उषा देवी को बड़ा टेंशन आता है कि इतने तेज वाले पति से मैं कैसे रहूंगी साथ में उसके, सत्यनारायण जी कैसे रहेंगे साथ में, कैसे संग करेंगी उनके साथ। तो फिर वो बड़ी डर जाती है जब पहले बार उनका संबंध होने का समय आता है, तो डर के, बहुत डर के संगम संबंध होता है उनका। तो सूर्यदेव जी आते बताते हैं इस संबंध से पुत्र प्राप्ति होगी, और इस पुत्र से सब विश्व डरेगा कि आप डर के मेरे साथ में आई थी, इसलिए इस पुत्र से पूरा विश्व में जितने भी जीव हैं सब डरेंगे। उनका नाम क्या है? यमराज। इसलिए जो भी पति पत्नी यहाँ बैठे हुए हैं, जो आगे बनने जा रहे हैं, सावधान रहिए, जो भी भावना को आप एकत्र होते हुए अपनाते हैं उसी भावना के अनुसार जीव आकर्षित होता है, उसी चेतना वाला जीव आता है। द्वेष में है, गुस्से में है, बहुत दुनियादारी के भावना में है, तो वैसे रजोगुणी जीव आएगा। हाँ, भगवान के भी चिंतन में है, भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं पहले इस जन्म से ही, तो वो वैसे भगवत भक्त जीव आएगा आपके गर्भ में। जो भी चेतना होगी वैसा जीव आएगा। इसलिए सावधान रहिए। हाँ, जब पुत्र प्राप्ति कन्या प्राप्ति की इच्छा से आप एकत्र हो गए तो प्रभुपाद कहते हैं 50 माला जब करना चाहिए, पवित्र भावना में रहना चाहिए, शुचिर्भूत होना चाहिए, उसका सारा नियम है बहुत सारा, और फिर संतान प्राप्ति गर्भदान संस्कार होना चाहिए। तो एनीवेज, तो उषा देवी को पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अभी देखो ऐसा जीव को उत्पन्न किया मैंने कि पूरी दुनिया डरेगी उससे। तो अगली बार खुद को बहुत संभाला और तैयारी किया। अगली बार जो संबंध हुआ तो बड़े आनंद से हुआ, प्रेम से हुआ। तो सूर्यदेव ने कहा कि अभी कन्या होगी और वो कन्या नदी रूप होगी, और नदी रूप कन्या के जल में जो भी कोई स्नान करेगा वो पहले वाले पुत्र के भय से मुक्त हो जाएगा, है ना। देखो सही चेतना रहेगी ना हमारी तो कई अच्छे काम होते हैं, पुराने बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, है ना। सबसे बड़ा रहस्य जो है ना वो सही चेतना में, राइट कॉन्शियसनेस इज द रियल सीक्रेट ऑफ ऑल सक्सेस। अगर आपकी चेतना सही है तो आपको सब जगह यश है। तो चेतना सही होने पर पुरानी गलतियां भी सुधर गई। तो वो जमुना जी है, ये सूर्यदेव की पुत्री है सेकंड नंबर, और थर्ड जब संतान हुई तो वो शनि महाराज है। लोग शनि महाराज को बुरा मानते थे, शनि महाराज बुरे नहीं है, पुराणों के अनुसार शनि महाराज भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, परम मग्न भक्त है भगवान के, इतने मग्न भक्त है कि ऊपर भी देखते नहीं है, हमेशा नीचे देखते हैं। बहुत सुंदर उनका वर्णन शनिदेव का। एनीवेज वो कथा में नहीं जाएंगे अभी। तो यमुना जी ब्रज का अलंकार है, भगवान ने यमुना किनारे में अनंत लीलाएं की है, यहां तक कि भगवान को राधा रानी ने बंसी सिखाई है, राधा रानी ने वो यमुना किनारे सिखाई है, भगवान ने राधा रानी से यमुना किनारे में नृत्य सिखा हुआ है, यमुना किनारे में केशी का वध किया है, यमुना किनारे कितने यमुना किनारे रास रचाया है, क्या नहीं किया है। अरे पैदा होते ही सबसे पहले यमुना में गिरे वो इच्छा से। हाँ, कुछ लीला में कहा गया ऐसे, वो भी सत्य है कि उन्होंने पैर बाहर निकाल के यमुना जी को चरण स्पर्श दिया जन्म होते ही पहले ही, फर्स्ट थिंग। और किस वर्णन में ऐसे आता है कि वो गिर गए पानी में और फिर ढूंढते रहे वसुदेव जी कहाँ गया कहाँ गया, लाला कहाँ खो गया। इस तरह से सबसे पहले ही उन्होंने अंग संग देकर यमुना जी को अपना चरणामृत बना दिया है, अंग संग देकर, अपने दिव्य अंग का संग देकर यमुना जी को भगवान ने चरणामृत बना दिया। इसलिए यमुना जी पहले से ही पुनीत है और भगवान का चरणामृत बनाकर बनकर जो भी उनके संग में आता है उनको पुनीत कर देती है। वो जहाँ जहाँ यमुना जी बहती है उस स्थान को पवित्र बना देती है। यमुना जी का ऐसा महात्म्य है कि यमुना जी तो पाप नाशिनी तो है ही, लेकिन जब ब्रज में प्रवेश करती है तो पाप के साथ पुण्य का भी नाश कर देती है। हाँ, पाप के साथ पुण्य का भी नाश कर देती है। तो पुण्य का नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों, सब तो पुण्य करने के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। यस सर नो? नहीं, भक्तों को तो पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। जो भी पुनर्जन्म करने को मजबूर कर देता है वो भक्तों को नहीं चाहिए। क्या पुण्य आपको वापस जन्म के लिए मजबूर करता है? हाँ, स्वर्ग लोक में देवता बनकर आएंगे आप और अप्सराओं का भोग लेंगे, बहुत बढ़िया, एकदम सुगंधित भोग। कोई बदबू का काम नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, कोई नाला नहीं, कोई टॉयलेट कोई है ही नहीं स्वर्ग में। अभी सुबह मैंने प्रवचन सुना महाराज जी का, वो कहते हैं कि देवता लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। अश्विनी कुमार है उधर लेकिन कोई क्लिनिक नहीं है उनका। ब्रह्मा जी बोलते इतने 3 trillion 11 billion ईयर्स के अंदर एक बार भी सर्दी खांसी भी नहीं होती उनको, ऐसा शरीर वहां पर। वो कैसे होता है? यहाँ पर पुण्य कमाने से फिर देवताओं का शरीर लेकर वहां जाना पड़ता है, फिर वहां पर भोग भोगते हैं और फिर जो क्षणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति फिर नीचे आना पड़ता है। और फिर वो एक बार बुरी आदत ऊपर की लग गई अच्छे अच्छे भोग वाली तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा, तो उतने अच्छे अच्छे भोग तो नहीं मिलेंगे, इसलिए ऊपर से टपका हुआ आदमी जो है ना यहाँ हमेशा परेशान ही रहता है। क्योंकि जब उसको 2-bedroom hall में रहने का हैबिट लग गया है, उसको झोपड़ी में भेज दिया तो कैसे है। झोपड़ी बहुत फाइव स्टार झोपड़ी है, लेकिन फिर भी क्योंकि केवल ये फैक्ट है कि उसको टू बेडरूम में रहने का आदत लग गई है, इसलिए फाइव स्टार झोपड़ी में भी उसको आनंद नहीं आता है। प्रीवियस कंडीशनिंग की वजह से अभी दुख हो रहा है, इसलिए स्वर्ग में जाना बहुत बेकार चीज है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये बात कहां से निकली कि जमुना देवी पुण्य का नाश कर देती है। सब लोग पाप को नाश करना चाहते हैं क्योंकि नरक से बचना चाहते हैं, यातना से बचना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से पाप से अधिक खराब पुण्य है। क्योंकि तो पाप जब होता है और पाप का फल जब प्राप्त होता है तो पाप का फल के प्राप्त होने में बहुत वेदना होती है, तो वेदना में भगवान की याद आती है। और पुण्य के फल में क्या मिलता है, भोग मिलता है, सुख मिलता है, और सुख के भोगने के समय भगवान की याद नहीं आती है। और भगवान के भक्त जो है वो सुख दुख की व्याख्या भगवान के संबंध में ही करती हैं। अगर भगवान की याद कोई चीज़ दिलाती है तो वो पुण्य अच्छी बात बताई गई है, पुण्य भी नहीं अच्छी बात, शुभ बात, पवित्र बात बताई गई है। और बढ़िया से बढ़िया बात भी अगर भगवान को भुला देती है तो वो अशुभ बात कहते हैं उसको। मतलब दुनियादारी के लोग जो व्याख्या करते हैं सुख और दुख की, शुभ अशुभ की, वो पूरी उल्टी व्याख्या भक्त लोग अपने जीवन में करते हैं। क्योंकि भगवान का जीवन में प्रवेश होने के बाद सब उल्टा हो जाता है, ऑल डेफिनेशंस गो उल्टा, है ना। तो उस तरह से भक्त लोग पुण्य भी ग्रहण नहीं करना चाहते ना पाप भी ग्रहण करना चाहते, वो केवल भजन करना चाहते, भगवान को रिझाना चाहते हैं। तो यमुना जी जब बाहर से अंदर प्रवेश करती है ब्रज में तो पाप के साथ वो पुण्य का भी नाश करती है, और साथ साथ वो यमुना जी में स्नान करने वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रेम और भक्ति भी देती है। शास्त्र में ऐसा लिखा है अगर आप प्रेम से हृदय से भाव से भी उनको अभी निहारेंगे, केवल भाव से निहारेंगे तो भी आपको कृष्ण प्रेम दे सकती है। ब्रज भूमि का भी ये महात्म्य है, ब्रज भूमि को भी अगर आप आते जाते प्रेम से निहारेंगे तो वो ब्रज भूमि भी केवल निहारने से आपको शुद्ध प्रेम भक्ति दे सकती है। यमुना जी का अनंत महात्म्य है, यमुना जी भगवान की प्रिय सखी है, भगवान की पंचम पत्नी भी है वो। एक लीला में तो भगवान की देवी बनकर उसने विवाह किया है भगवान से, लेकिन वो ब्रजवासिनी पत्नी है भगवान की, बाकी सारी पत्नियां द्वारकावासी हैं, लेकिन एक भगवान की ब्रजवासिनी पत्नी है, वो है श्री यमुना देवी। और यमुना देवी ने भगवान के जो 16,108 पत्नियां थीं उनके उद्धार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भगवान की पत्नियां रोते रोते वृंदावन आई और यमुना जी के लहरों को उछलते हुए देखा तो फिर उन्होंने प्रश्न किया, अरे तुम तो हमारे सौत हो ना, हमारी को वाइफ हो, हम सब रो रहे हैं और तुम तो उछाल रहे हो, आपके लहरें उछालने का मतलब आप बहुत आनंद में हो, तो ये कैसे हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, सब बोलते सब सखियां सब पत्नियां। तो यमुना जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, वो कहते हैं हम ब्रजवासिनियां सब राधा रानी का अंश हैं, हमारा सबका संबंध राधा रानी से है, और हमारा भगवान से विरह होने के पश्चात भी हम कैसे आनंद में रह सकती है इसका रहस्य आपको उद्धव जी बताएंगे कुसुम सरोवर में। ये रहस्य बहुत बढ़िया है, बड़ी चीज है, वृंदावन में दुख में भी सुख है, यहां पर इतना दिव्य वातावरण यहां पर है कि भगवान नहीं है उसके दुख में भी परम सुख का लाभ यहां पर होता है। वो रहस्य के बाद आपको उद्धव जी समझाएंगे। तो उद्धव जी ने फिर दर्शन दिया है उनको और फिर भागवत सुनाया है और उनका उद्धार करके उनको सारूप्य मुक्ति गोलोक धाम में भेजा है। तो ये सारी प्रक्रिया में भगवान की पत्नियों को उद्धार करने में यमुना जी ने गुरु बनकर बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई है। इस तरह से यमुना देवी का दर्शन जो है वो भगवान जैसा ही है, सांवले रंग का है, वो कमल की माला हाथ में पकड़ती है, कमल की माला पहनती है और भगवान की सेवा करती रहती है। हम सब लोग यमुना जी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। श्री यमुना मैया की, सांवले रंग की है वो, और यमुना जी के उस पार 5 वन हैं और यमुना जी के इस पार 7 वन हैं। इस प्रकार से भगवान के सबसे प्रिय 12 वन जो हैं वो यमुना जी के आसपास ही हैं। 7 वन इस तरफ हैं, 5 वन उस तरफ हैं। उस तरफ बेल वन, भांडिर वन, भद्र वन, इस प्रकार के वन हैं। इस प्रकार इस यहाँ पर मधुवन, ताल वन, वृंदावन, इस प्रकार के वन हैं और काजल की तरह वृंदावन को घेरती है वो। बड़े प्रेम से वृंदावन की शोभा बढ़ा दी। यमुना जी के पास वृंदावन में अगर कोई डेड बॉडी आती है तो वो उसका अंतिम गंतव्य स्थान है। यहाँ पर दाह संस्कार होने पर यमुना किनारे वृंदावन में कोई भी व्यक्ति दुनिया में दोबारा दुख भोगने के लिए नहीं आ सकता है। दिस इज द लास्ट स्टॉप, कोई नहीं आएंगे। अगर वो यहाँ पहुँच गए हैं किसी भी प्रकार से, किसी ने पहुँचा दिया उनको यहाँ तक, तो फिर वापस नहीं आ सकते। बहुत ही महात्म्य है इस जगह का। यमुना जी का रज से स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। यमुना जी की शक्ति है, यमुना जी के रज में वो शक्ति है कि आपको कृष्ण प्रेम भक्ति दे सकती है। जय जय श्री राधे।